हमारे इस वर्ष के रामनवमी के पर्व पर और हनुमान जयंती के पर्व पर जो हमने राम कथा प्रारंभ की थी, आज उसका आखिरी सत्र है। हालांकि हनुमान जयंती कल है, परंतु कल से यहां मंदिर में कुछ पेंटिंग का काम शुरू होने वाला है, इसलिए हनुमान जयंती का महोत्सव हम आज ही मना रहे हैं। तो आज सुबह हमने सुंदरकांड से चर्चा की। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को जान लेते हैं और अब वो 100 योजन कूदते हैं, महेंद्र पर्वत से छलांग लगाते हैं, और हनुमान जी की ये जो छलांग है सीता को खोजने के लिए, हमने देखा सुबह कि उसकी तुलना की गई है एक साधक को भक्ति प्राप्त करने की, कि जब साधक अपनी साधना करता है भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो उसकी साधना में कौन कौन से अवरोध आते हैं। तो सबसे पहला अवरोध कौन सा था हनुमान जी के समक्ष? मैनाक पर्वत। और जिसकी तुलना हमने की, भक्ति में जब हमें सुविधाएं मिलती हैं और सुविधाओं के कारण हम भक्ति में संतोष ले लेते हैं, ये सोचते हुए कि इससे आगे मुझे और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, तो हनुमान जी ने केवल मैनाक पर्वत को स्पर्श किया ये दिखाने के लिए कि जो मैंने व्रत लिया है प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करने का, उसके बीच में कोई अवरोध मुझे रोक नहीं पाएगा। और निरादर भी नहीं किया मैनाक का, स्पर्श किया, संतुष्ट किया, परंतु जो उन्होंने प्रण लिया था उस प्रण में वो आगे बढ़ते चले। और उसके पश्चात एक राक्षसी और आई जिसका नाम था सुरसा, और ये सुरसा राक्षसी प्रतीक है अहंकार की। ये किस प्रकार से अपना मुंह बड़ा कर रही थी हनुमान जी को खाने के लिए, और हनुमान जी भी बड़े हुए, परंतु देखा कि इस पर विजय प्राप्त करने के लिए मुझे नम्रता का शस्त्र अपनाना होगा, और हनुमान जी बिल्कुल छोटे हुए और मुंह में जाकर बाहर निकल आए। और इस प्रकार से सुरसा को संतुष्ट भी किया, और हनुमान जी रुके नहीं अपने व्रत में, अपनी यात्रा में। और इसके पश्चात जैसे हनुमान जी और आगे बढ़ते हैं, तो उड़ते उड़ते अचानक हनुमान जी की गति रुक जाती है, और वो इतना प्रयास करते हैं आगे जाने का, परंतु ऐसा उन्हें महसूस हो रहा था मानो पीछे से कोई खींच रहा है, कोई पकड़े है उन्हें। और क्या हो रहा था कि हनुमान जी की जो परछाई थी, हनुमान जी की जो छाया पड़ रही थी समुद्र के सतह के ऊपर, उस छाया को एक सिंहिका नामक राक्षसी ने पकड़ लिया था। तो ये सिंहिका नामक राक्षसी जो थी, इसे एक वरदान मिला था कि जो भी ऊपर से उड़ते हुए जाए और उसकी छाया परछाई यदि ये सिंहिका पकड़ ले, तो वो व्यक्ति उड़ नहीं पाएगा, मानो उस व्यक्ति को ही पकड़ लिया हो। तो हनुमान जी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो हनुमान जी को पता लगा कि ये सिंहिका राक्षसी का काम है। तो आचार्य बताते हैं कि जो सिंहिका राक्षसी है, ये हमारे भक्ति का जो तीसरा अंग है, जिसकी चर्चा हमने सुबह की, कौन सा है तीसरा अंग? पहला साधना, दूसरा अंग है सेवा, तीसरा अंग सत्संग या भक्तों का संग। तो भक्तों के संग में ये सिंहिका नामक राक्षसी जो अनर्थ है, वो अवरोध डालती है, और ये सिंही का प्रतीक है द्वेष। जब हमारे अंदर विशेष रूप से भक्तों के प्रति द्वेष भावना जागृत होती है तो वो प्रतीक है सिंहिका की। और कैसे इसे समझा जाए, जैसे सिंहिका ने हनुमान जी को नहीं पकड़ा, बल्कि हनुमान जी की जो छाया थी उसको पकड़ा सिंहिका ने, तो उसी प्रकार से जो द्वेष होता है ये किसी भक्त के अंदर कुछ, जैसे किसी की छाया काली होती है, उसी प्रकार से जब किसी के अंदर हम कुछ अवगुण देखते हैं तो उस अवगुण को पकड़ने के प्रयास करते हैं और उस अवगुण से उस व्यक्ति को नीचा खींचना चाहते हैं हम, इसे कहते हैं द्वेष। और हालांकि गीता में भगवान ने कहा है इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, कि हम इस भौतिक संसार में क्यों हैं, दो कारणों के वजह से, एक है बुरी इच्छा और द्वेष। तो जो मूलतः इच्छा क्या थी हमारी, कि मैं भगवान क्यों नहीं बन सकता, और मूलतः द्वेष क्या था हमारा, कि ये कृष्ण भगवान क्यों है। ओरिजिनल इच्छा थी मैं भगवान क्यों नहीं, ओरिजिनल द्वेष ये कृष्ण भगवान क्यों है। तो श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे जैसे एक मधुमक्खी होती है और एक मक्खी होती है, हालांकि दोनों मक्खी ही है, परंतु एक के आगे लगा हुआ है मधुमक्खी, क्योंकि वो हर समय मक्खी ढूंढती रहती है, चाहे कितना भी कूड़ा करकट कहीं पर हो, परंतु यदि एक कोई गुलाब का फूल या कमल का फूल उगा हुआ है तो ये मधुमक्खी वहां जाकर मधु का आस्वादन करती है। और इसके ठीक विपरीत होती है मक्खी, चाहे कितना भी सुंदर उपवन हो, कितने भी अच्छे पुष्प हो, कितना भी मधु हो, परंतु ये जो मक्खी है ये हर समय कूड़ा करकट में ही जाएगी। तो जो अंदर द्वेष होता है ये द्वेष हर समय दूसरे का दोष निकालता है, और ये जो इच्छा और द्वेष के विषय में भगवद गीता में भगवान कहे हैं, ये वास्तविक रूप में जो मायावाद होता है, मायावाद का अर्थ क्या है, कि ये कृष्ण भगवान क्यों है, मैं भगवान हूं, इसे कहते हैं मायावाद। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी में थे और वहां पर एक मायावादी जिसने एक पुस्तक लिखी थी मायावाद के ऊपर, और इस मायावादी ने सोचा कि ये अंतर्राष्ट्रीय गुरु हैं ये भक्ति वेदांत स्वामी, तो इनको यदि मैं बुलाऊंगा मेरी पुस्तक का उद्घाटन के लिए तो मेरी पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानी जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद को बुलाया अपनी पुस्तक का उद्घाटन कराने के लिए, तो श्रील प्रभुपाद जी आए और बड़ा वहां पर सब व्यवस्था की थी इसने, बहुत से लोग आए थे, पंडाल लगाया था। तो श्रील प्रभुपाद जी, उनको जब माइक दिया गया तो प्रभुपाद जी ने अपना प्रवचन शुरू कर दिया गीता यथारूप से। तो ये व्यक्ति थोड़ा व्याकुल हुआ कि ये तो अपना प्रवचन किए जा रहे हैं, तो बीच में नोट भेजा कि मेरी पुस्तक उसके विषय में कुछ कहो। फिर भी प्रभुपाद जी अपना प्रवचन किए जा रहे थे, फिर से एक और नोट भेजा। तो बहुत समय बीत गया, प्रभुपाद जी भगवत गीता यथारूप से कह रहे थे, तो इससे रहा नहीं गया, तो इसने माइक लिया और कहा अब स्वामी जी मेरे किताब के विषय में कुछ कहेंगे। तो प्रभुपाद जी ने माइक लिया और कहा ये किताब बोगस है, इस किताब के अंदर केवल भगवान के प्रति द्वेष दर्शाया गया है, और मैं क्या कहूं इस किताब के विषय में, कोई मत पढ़ना इस किताब को। देखिए श्री प्रभुपाद जी का साहस। तो ये जो मायावाद विचार होता है, ये माया का सबसे बड़ा शस्त्र है बद्ध जीवात्मा को इस संसार में रखने के लिए, सबसे बड़ा अनर्थ भगवान के प्रति द्वेष। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि ये मायावादी जो होते हैं अपने आप को वेदांतिस्ट कहते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि वेदांती का एक और अर्थ होता है बेदांत, बिना दांत के। तो जब माया इनके दांत निकाल लेती है तब जाकर ये सारे वाक्य निकलते हैं, और इसलिए इनको कहते हैं वेदांती। तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि भक्ति के पथ में, विशेष रूप से हमारी साधना में, हमें भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कहा गया है कि भक्तों के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए हर समय एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हर समय प्रोत्साहित करते रहते थे अपने शिष्यों को। श्याम सुंदर प्रभु उनके एक शिष्य थे, और एक बार श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद जी के पास आए और कहे कि थोड़ी बुरी खबर है, कुछ ऐसा हुआ कि मुझे शायद जेल जाना होगा किसी कारणवश। तो प्रभुपाद जी ने जब सुना कि इन्हें जेल जाना होगा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो उसमें क्या हुआ, भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए थे। तो इसमें भी वो प्रोत्साहित कर रहे थे श्याम सुंदर प्रभु को। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं क्यों जेल जाना होगा, तो ये कहते हैं क्योंकि मैं किसी ड्रग डीलिंग में पकड़ा गया था बहुत पहले। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं भी ड्रग डीलिंग करता था, प्रयाग फार्मेसी थी मेरी दुकान। तो प्रभुपाद जी ने कहा जब तक हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहोगे तो कोई जेल और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे प्रोत्साहित किया करते थे। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति में हमारा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, कि यदि कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे तो हो सकता है कि हम उस पर विश्वास कर लें। कर लेते हैं कई बार विश्वास, जब लोग कहते हैं प्रभु जी आप ऐसे हैं, प्रभु जी आप इतने विद्वान हैं, प्रभु जी आप ये हैं वो हैं, तो थोड़े समय बाद विश्वास होने लगता है कि बहुत दिनों बाद जाना आपने। तो जब कोई प्रशंसा करता है तो हो सकता है कि मैं विश्वास कर लूं, जब कोई मेरी निंदा करता है तो हो सके मैं उससे नफरत करने लगूं, और जब कोई मुझे दुर्लक्ष कर देता है तो हो सके कि मैं कभी उसे क्षमा न करूं। परंतु जो व्यक्ति मुझे प्रोत्साहित करेगा भक्ति में, उस व्यक्ति को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, ऐसा आचार्य कहते हैं। तो हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। जैसे इंद्रिय भोगी क्या करते हैं, इंद्रिय भोगी एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि जानते हैं कि सभी नरक में जाने वाले हैं, तो नरक में जाने से पहले यहां पर थोड़ा एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें ताकि कुछ यहां पर आनंद मिले। तो एक दूसरे का गुणगान चलता रहता है, हालांकि उसका एकमात्र कारण यही है कि अंदर द्वेष है, कि द्वेष के कारण वो सोच रहा है कि मेरे अंदर ये सारे गुण क्यों नहीं। तो एक सुंदर उदाहरण दिया गया है कि हमें भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उदाहरण दिया गया है एक पर्वत का, कि जब पर्वत को हम दूर से देखते हैं तो कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता कि कैसे पेड़ हैं, कितने पशु पक्षी हैं, केवल दूर से एक बड़ा विशाल विशाल काया दिखाई देती है। तो वही पर्वत को यदि आप दूरबीन से देखो, दूरबीन जानते हैं, दूरबीन देखा है सबने, तो जब दूरबीन से उस पर्वत को आप देखो तो ठीक से सब कुछ दिखाई देगा कि पर्वत के ऊपर कितने वृक्ष हैं, कितने पशु पक्षी हैं, कैसा दिखता है पर्वत। तो ये उदाहरण दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो उस पर्वत के समान हैं, इतनी दूर से हम उनका दर्शन नहीं कर सकते। और ये जो दूरबीन है इसकी तुलना इस हरे कृष्ण आंदोलन से की गई है कि जब हरे कृष्ण आंदोलन से उस दूरबीन को लेकर हम देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ठीक से दिखते हैं, परंतु दूरबीन की विशेषता क्या होती है, कौन सा दूरबीन सबसे शक्तिशाली माना गया है, जिसके अंदर जो लेंस होता है जितना शक्तिशाली या जितने ज्यादा लेंस होते हैं उतना नजदीकी से वो दिखाता है दूरबीन। तो ये जितने ज्यादा लेंस जो हैं इसकी तुलना की गई है भक्तों से इस हरे कृष्ण आंदोलन में, कि जितने ज्यादा भक्त हमारे सामने रहेंगे और उनके थ्रू यदि हम भगवान श्री कृष्ण को देखने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा नजदीकी से भगवान दिखेंगे। इसका अर्थ क्या है कि जितनी ज्यादा कृपा हम भक्तों की लेंगे उतने ज्यादा भगवान प्रकट होंगे प्रत्यक्ष रूप से हमारे समक्ष। तो ये जो सिंहिका थी, ये जो द्वेष है, हालांकि बाकी सारे जो अनर्थ हैं उनको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, परंतु ये जो एक अनर्थ है इसका नाश ही करना है। यहां तक कि अहंकार और काम क्रोध इन्हें भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है और शुद्ध बनाया जा सकता है, परंतु द्वेष इसे नाश करना होता है। इसीलिए हनुमान जी ने सिंहिका का संहार किया। तो द्वेष का संहार हुआ और उसके पश्चात अब हनुमान जी पहुंच चुके हैं त्रिकुट पर्वत पर, जिस पर स्थित है लंका। और वहां पर पहुंचने के पश्चात हनुमान जी लंका की तरफ देखते हैं और लंका ये नगरी इतनी विशाल और इसका साम्राज्य रावण का इतना विशाल था, और हनुमान जी ने देखा कि इसके अंदर घुस पाना अत्यंत कठिन है। तो हनुमान जी सोच रहे थे कि जो साधारण वानर वहां पर हैं और हम प्रयास करने वाले हैं, पूरी वानर सेना इस लंका में चढ़ावा बोलना है, परंतु पता नहीं है साधारण से वानर जा पाएंगे कि नहीं। तो हनुमान जी एक छोटी सी बिल्ली बने और बिल्ली के रूप में वो अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। तो बिल्ली बनकर अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे तभी वहां पर खड़ी एक और राक्षसी जिसका नाम था लंकिनी। तो ये लंकिनी प्रतीक थी पूरे लंका की शक्ति की, और ये लंकिनी पहचान गई कि ये वानर है, कोई बिल्ली नहीं। तो तुरंत लंकिनी रोक लेती है, हे वानर रुक जाओ, कहां जाने का प्रयास कर रहे हो। तो हनुमान जी समझ गए कि इसने मुझे पहचान लिया। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो मैं राम दूत हूं, राम दूत हनुमान, और मैं यहां पर एक मिशन पर आया हूं, तो इंटरमिशन मत डालो। तो लंकिनी बहुत क्रोधित होती है और लंकिनी रोकने का प्रयास करते हैं हनुमान जी को। तो हनुमान जी एक तड़ाक तमाचा लगाते हैं लंकिनी को और जैसे ही लंकिनी को तमाचा लगाया हनुमान जी ने, तो लंकिनी के मुख से खून बहने लगा और वहीं पर वो घायल गिर पड़ी। और लंकिनी धन्यवाद देने लगी हनुमान जी को, तो हनुमान जी आश्चर्यचकित हुए, इतने सारे राक्षस मिले परंतु किसी ने धन्यवाद नहीं किया इस प्रकार से कि मैंने तमाचा लगाया, इतनी जोर से खून निकल रहा है और ये लंकिनी धन्यवाद दे रही है। तो लंकिनी कहती है कि मुझे बहुत पहले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब एक वानर आके तुम्हें तमाचा लगाएगा, तो मैं जान गई थी कि ये वानर आया है, तो मैं प्रेरित कर रही थी कि तुम तमाचा लगाओ। और ये भी कहा था कि जब कोई वानर आके तुम्हें तमाचा लगाएगा उसके पश्चात लंका का विनाश निश्चित है। तो हनुमान जी अब प्रसन्न हुए ये सुनकर। तो ये जो लंकिनी है, ये लंकिनी प्रतीक है हमारा जो चौथा अंग भक्ति का, कौन सा था याद है? प्रचार, साधना, सेवा, भक्तों का संग और चौथा प्रचार। तो प्रचार में जो अवरोध आते हैं वो लंकिनी के समान होते हैं कि कई बार प्रचारकों को लंका जैसे क्षेत्रों में जाना पड़ता है प्रचार करने के लिए। जहां पर रावण का साम्राज्य है, और श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये जो एयरपोर्ट पर, देशों के एयरपोर्ट पर ये जो इमिग्रेशन वाले खड़े रहते हैं, पूछते हैं कि कौन है, क्यों आए हो, चले जाओ, प्रभुपाद जी कहते हैं ये कुत्तों के समान है। जैसे आप किसी गली में जाओ और कुत्ता भौंकना शुरू करता है, तो ये आप किसी देश में जाओ विशेष रूप से प्रचार करने के लिए, तो ये पूछते हैं कौन है, पासपोर्ट, क्यों, कितने दिन, और यदि संतुष्ट नहीं कर पाए तो जाओ। जैसे हमारे भक्त वो रशिया जा रहे थे पिछले साल, राधा गोपीनाथ प्रभु, तो वहां पर जाने के लिए सब कुछ आपको पैंट शर्ट पहनना होता है और कोई तिलक नहीं, कंठी माला नहीं, और पता नहीं लग जाए उनको कि ये हरे कृष्ण वाले आए हैं। तो एक एयरपोर्ट पर वो इमिग्रेशन वाले चेक कर रहे थे, तो उन्होंने देखा, पासपोर्ट वगैरह देखा और इनकी वेशभूषा देखी। तो वेशभूषा देखते ही वो व्यक्ति खड़ा रहा, वो ऑफिसर जो था, और वो देख रहा था प्रभु जी को, और उसने कहा आप हरे कृष्ण के हैं, और सब कुछ छिपाया था, कोई कंठी माला नहीं, तिलक नहीं, और ऊपर टोपी पहनी थी, शिखा को छुपा दिया था, और पैंट शर्ट पहने हुए। तो पूछा गया कैसे पहचाना, कहा कि जब व्यक्ति पैंट शर्ट पहनता है तो हमें पता रहता है कि कैसा पैंट शर्ट वो पहनना चाहिए, परंतु क्योंकि आप हरे कृष्ण के, आपको मालूम नहीं, बहुत समय हो गया शायद पैंट शर्ट पहने। तो जान गए कि ये हरे कृष्ण वाला ही होगा जो केवल धोती पहनना जानता है। तो कहा कि जाइए जाइए, हम जानते हैं आपको, तो भेज दिया। परंतु कई बार वो रोक देते हैं, जैसे एक और हमारे ब्रह्मचारी वो सिंगापुर जा रहे थे, तो वहां पर तो बहुत कठिन नियम है कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं घुस सकता, लंका के समान कोई धार्मिक व्यक्ति हनुमान के समान वहां पर जा नहीं सकता। तो जैसे हनुमान जी बिल्ली बने वैसे ये लोग पैंट शर्ट पहनकर सब कुछ अपना छिपा कर जाते हैं। तो एक भक्त सब कुछ उन्होंने अपना छिपाया, परंतु कई बार क्योंकि इतना बार तिलक लगाया है तो यहां पर एक मार्क रह जाता है, वो इसके ऊपर, त्वचा के ऊपर, माथे के ऊपर। तो देखा कि ये क्या है, ये हरे कृष्ण का ही है कि नहीं, और वहां से फिर से भेज दिया, एयरपोर्ट से भेज दिया वापस। तो ये लंकिनी उसी के समान है, प्रचार में जो अवरोध डालती है। परंतु हनुमान की समान होना चाहिए एक प्रचारक को, उसके अंदर साहस होना चाहिए, निडर होना चाहिए एक प्रचारक। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका में वो गए और वहां पर MIT कॉलेज जो सबसे विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे हैं ये सब बड़े बड़े विद्वानों को, वैज्ञानिकों को, और ये पूछते हैं प्रभुपाद जी से, एक व्यक्ति खड़ा होकर पूछता है, ये माथे पर मट्टी क्या लगाई है आपने? ये तिलक को मट्टी कहते हैं वो। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये गले में रस्सी क्या बांधी है? टाई पहनी थी उसने, तो वो अपने टाई की तरफ देखता है, उसे भी पता नहीं मैं क्यों टाई पहना हूं। पहली बार किसी ने प्रश्न पूछा कि टाई क्यों और वो भी रस्सी क्यों। हालांकि वो हम कहते हैं वो फांसी का फंदा क्यों बांधा है, उसी के समान होता है फांसी का फंदा, थोड़ा और खींच दे तो काम तमाम हो जाएगा उसका। तो जब प्रभुपाद जी ने पूछा कि ये रस्सी क्यों बांधी है गले में, तो वो उसके पास कोई उत्तर नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने कहा बैठ जाओ, सोच के बताना बाद में। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से खड़ा होकर पूछता है, क्या आप भगवान को देख पाते हैं कि नहीं? प्रभुपाद जी ने कहा हाँ मैं देख रहा हूं, तुम बीच में आ रहे हो, बैठ जाओ। मुझे तो भगवान दिख रहे हैं परंतु तुम खड़ा होकर बीच में आ रहे हो, बैठ जाओ। तो प्रभुपाद जी देखिए इस प्रकार से वो निडर थे। एक रिपोर्टर आकर प्रभुपाद जी को पूछता है कि स्वामी जी आप अमेरिका में क्या कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम क्या कर रहे हो, तुम भी भारतीय हो? तो वो कहता है भाई यहां पर हमारे बिजनेस के लिए आसार ज्यादा हैं, हायर प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा आसार हैं बिजनेस के लिए। प्रभुपाद जी ने कहा मेरे लिए भी, प्रचार के आसार यहां पर बहुत ज्यादा हैं। एक व्यक्ति वो आके प्रभुपाद जी के लिए बहुत ही आलिशान एक गाड़ी किसी ने अरेंज की थी प्रभुपाद जी को एयरपोर्ट से लाने के लिए। तो रिपोर्टर आके पूछता है कि स्वामी जी आप तो एक बैरागी विरक्त हैं और आपके लिए इतनी बड़ी आलिशान गाड़ी, ये सब क्या है? तो प्रभुपाद ने कहा आलिशान, इसे आलिशान कहते हो? टिन का पत्रा है केवल, वो रॉयल्स रॉय गाड़ी थी जो करोड़ों में बिकती है। तो प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण का जो सेवक है, कृष्ण का जो प्रचारक है, उसके लिए तो सोने की गाड़ी आनी चाहिए, ये क्या टिन पत्रे की गाड़ी लेकर आए हो? तो वो बेचारा चुप हो गया, वो सोचा, उसे लगा कि मैं कोई ऐसा प्रश्न पूछ बैठूंगा कि स्वामी जी भी चेकमेट हो जाएंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा कि गांधी जी में और मुझ में क्या अंतर है? तो सभी सोचने लगे भाई क्या अंतर है। तो प्रभुपाद ने कहा कि गांधी जी ने तो विदेशों को बाहर निकाला देश से, विदेशियों को, परंतु मैंने उन विदेशियों को अपनी सेवा में लगा लिया। और वो भी प्रभुपाद जी लंदन में कह रहे थे, लंदन में कह रहे थे, और वहां पर एक वही लंदन का भक्त वो प्रभुपाद जी को चामर ढुला रहा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो इसे एक कौड़ी मैं नहीं देता और ये सेवा में लगा है, तो ये अंतर है। तो उसी प्रकार से देखिए श्रील प्रभुपाद जी जो इतने निडर थे, जैसे एक बार ऐसा हुआ प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे किसी मंदिर में, तो कुछ गुंडे वो घुसे मंदिर में और उनके हाथ में वो साइकिल की चेन थी, एक के हाथ में साइकिल की चेन, एक के हाथ में इतनी बड़ी सलाख। तो इस प्रकार से ये दो तीन गुंडे ये मंदिर में घुसे और चलते चलते अपने सलाख और चेन प्रभुपाद की तरफ चलते आ रहे हैं, और सब भक्त वो अब सोच रहे क्या करें, प्रभुपाद जी कुछ कहें तो हम कुछ करें। तो प्रभुपाद जी अपना प्रवचन देते हुए रुके और इनको देख रहे थे और ये चलते आ रहे थे। बस सबको लग गया कि अब ये कुछ करने वाले हैं, प्रहार करेंगे शायद। तो ये जैसे ही इतना निकट पहुंचे, प्रभुपाद जी ने कहा रुक जाओ। और प्रभुपाद जी ने इस इतनी शुद्धता से और इतनी गर्जना से कहा रुक जाओ, तो वो रुक गए वहां पर। और तमाल कृष्ण महाराज बैठे थे उनके निकट। प्रभुपाद जी ने कहा यदि मैं इस व्यक्ति को एक संकेत करूं तो तुम दोनों को अभी यहां खत्म कर देगा। तो एक शब्द इनके मुख से निकला नहीं, वो जैसे आए थे वैसे चले गए। तो देखिए प्रभुपाद जी के अंदर ये निडरता थी, जैसे हनुमान जी। लंकिनी ने जब रोका तो ऐसा नहीं कि हनुमान जी सोचे कि भाई चलो अब चलते हैं फिर से, यहां पर पासपोर्ट स्टैंप नहीं हुआ लंका के जाने के लिए। वहां पर प्रभुपाद जी हनुमान जी ने अपनी निडरता दिखाई। तो आचार्य बताते हैं कि उसी प्रकार से चार गुण हनुमान जी के इसमें देखे गए हैं। ये जो अलग अलग प्रकार के अवरोध आए हनुमान जी के इस छलांग में, यात्रा में, तो सबसे पहले हनुमान जी को याद दिलाया गया कि तुम कूद सकते हो 100 योजन। तो सबसे पहला गुण हनुमान जी का कहा गया है उनकी दृष्टि, नहीं धृति। सबसे पहला गुण है धृति, और धृति कहते हैं साहस को, कि हनुमान जी ने यह साहस किया। देखो समुद्र के ऊपर छलांग लगाए हैं। कई बार एक छोटा सा सरोवर या कोई टब हो बाथरूम में, उसमें भी किसी को तैरना नहीं आता तो कूदने में थोड़ा डर लगता है। जैसे हमारे एक भक्त वो तैरना सीख रहे थे, तो हम उन्हें ले गए थे एक स्विमिंग पूल में। तो वहां पर ले गए तो नीचे डालने से इतना डर रहे थे, इतना पानी देख लिया, पहली बार इतना पानी देखा और तैरना आता है। तो हमने थोड़ा सा धक्का मार दिया, तो धक्का मारते ही तो जोर से चिल्लाने का, कृष्ण कृष्ण नरसिंह भगवान अब तो, और हाथ ऊपर कर इतना जोर से चिल्लाने लगे, और देखा पानी यहीं तक था। तो देखा भाई ये जमीन ऊपर आ गई क्या। तो देखिए हनुमान जी को यदि मान लो किसी को ये कहा जाए कि समुद्र के ऊपर छलांग लगाओ, तो कोई व्यक्ति सोचे भाई छलांग तो मैं लगा दूंगा, बीच में यदि फ्यूल चला गया और नीचे गिरना पड़ा तो क्या होगा। तो धृति साहस, ये सबसे पहला गुण हनुमान जी का यहां पर देखते हैं, उनके अंदर ये साहस था ये कार्य करने का। और दूसरा गुण, जब मैनाक पर्वत सामने आया तो दूसरा गुण हनुमान जी का देखा गया दृष्टि, कि हनुमान जी ने देख लिया कि यदि मैं यहां पर रुक जाऊंगा तो कार्य पूरा नहीं होगा। तो दूरदर्शिता जिसे कहते हैं, दूरदर्शिता का अर्थ है कि आगे की जो सोचता है कि यदि यहां पर रुक जाऊंगा तो आगे का कार्य पूरा नहीं होगा। तो ये जो दृष्टि हनुमान जी के पास थी, इसके वजह से मैनाक के ऊपर विजय प्राप्त की हनुमान जी ने। और फिर सुरसा सामने आई तो हनुमान जी का तीसरा गुण यहां पर बताया गया है, मति या तीक्ष्ण बुद्धि। सुरसा के सामने हनुमान जी ने अपनी मति या तीक्ष्ण बुद्धि का इस्तेमाल किया और सुरसा के ऊपर विजय प्राप्त की। और अंततः सिंहिका को वश में करने के लिए हनुमान जी ने दाक्षता दिखाई कि सिंहिका का नाश करना है और अपनी दक्षता से सिंहिका का नाश किया। तो धृति, दृष्टि, मति और दाक्षता, ये चार गुण होने चाहिए यदि हमें भी सीता को प्राप्त करना है, भक्ति को प्राप्त करना है, तो जैसे हनुमान जी ने इस अपनी यात्रा में दिखाया। और हनुमान जी फिर लंका पहुंचे और हालांकि सुंदरकांड में बहुत सुंदर वर्णन है कि वहां पर जाने के बाद क्या क्या हुआ, जिसकी चर्चा हम अगले साल करेंगे। तो हमने सोचा कि अब थोड़ा हनुमान जी के कुछ लीलाओं के ऊपर रोशनी डालते हैं कि जब जांबवान उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया और अंगद से कहा कि बचपन में हनुमान जी को सारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि तुम अपनी सारी शक्ति भूल जाओगे, परंतु जब कोई याद दिलाएगा तब फिर ये शक्तियां याद आएगी। तो सभी पूछते हैं कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, इतिहास बताओ। तो जांबवान इतिहास बताते हैं कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ और जन्म के पश्चात हनुमान जी की क्या बाल लीलाएं थी, बहुत ही मनोहर और रोमांचक बाल लीलाएं थी हनुमान जी की। तो पूंजिका स्थली नामक एक अप्सरा थी जिसने किसी ऋषि के प्रति अपराध कर दिया था, इसलिए उस ऋषि ने पूंजिका स्थली इस अप्सरा को श्राप दे दिया था कि तुम एक वानर परिवार में जन्म लोगी, तुम अपने आप को इतना सुंदर मानती हो, एक बंदरी बन जाओगी। तो वो एक वानर परिवार में जन्मी और उसका नाम हुआ अंजना, परंतु फिर भी बहुत सुंदर थी और वायुदेव इस अंजना से आकर्षित हुए और वायुदेव और अंजना से उत्पन्न हुए हनुमान जी। तो हनुमान जी बचपन में वो बहुत नटखट थे, तो छोटे से वानर हनुमान जी वो अपने पिता के आश्रम के बाहर घूम रहे थे। और देखिए, छोटा सा जो वानर होता है वो बहुत उछल कूद करता है, बड़े बड़े जो होते हैं वो बैठे रहते हैं, परंतु जो छोटे छोटे वानर होते हैं वो कभी यहां कूदते हैं, कभी सर पे, यहां वहां। तो हनुमान जी यहां वहां कूद कूद कर नटखट कार्य कर रहे थे। तो हनुमान जी ने ऊपर देखा सूर्य की तरफ, तो देखा भाई ये लाल फल, इतना सुंदर ये लाल फल क्या है, तो पता नहीं कि ये सूर्य है, लगा कि कोई फल है, तो खाने के लिए छलांग लगाई सूर्य को खाने के लिए। परंतु जब हनुमान जी छलांग लगाते हैं तो कोई साधारण छलांग नहीं होती। तो हनुमान जी छलांग लगाकर जा रहे हैं अब सूर्य को खाने के लिए, सोचते हुए कि ये कोई लाल फल है, तो सूर्य देव देख रहे हैं ये कौन, ऐसा कोई व्यक्ति और वो भी एक वानर मुझे खाने के लिए इतनी तेजी से मेरी तरफ आ रहा है और कुछ हो भी नहीं रहा इसे। तो सूर्य देव ने अपनी रोशनी टेम्परेचर बढ़ा दिया, हाँ, वाट्स बढ़ा दिया उसका, परंतु फिर भी हनुमान जी को कुछ नहीं हो रहा था। तो सूर्य देव ने सोचा कि इतना सुंदर है ये वानर, आने दो इसे। तो अपने रथ पर जगह दे दी हनुमान जी को कि थोड़ा विश्राम करो, जो भी कुछ करना है बाद में करना, पहले विश्राम करो। तो हनुमान जी सूर्यदेव की रथ पर बैठे, उधर तक पहुंच गए, एक छलांग में सूर्यदेव और उनके रथ पर बैठ गए। और उसी समय राहु आ रहा था सूर्य ग्रहण के लिए। आप जानते हैं राहु को ये अनुमति है सूर्य को खाने की कुछ कुछ समय के अंतराल में। तो राहु आ रहा था दूसरी तरफ से, तो हनुमान जी रथ पे बैठे राहु को देखते हैं, अरे ये काला फल कौन है। तो अब इस काले फल को खाने के लिए छलांग लगाई, तो राहु डर गया कि ये कौन है भाई, कि अब तक तो बीच में कोई आया नहीं था अवरोध डालने के लिए, अब ये कौन आया। तो राहु भागते हुए इंद्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि दूसरा राहु कौन आ गया। तो इंद्र कहते हैं दूसरा कौन राहु, उधर कोई दूसरा राहु है, वो शायद मुझे और सूर्य दोनों को खाने जाने वाला है। तो इंद्र वहां पर ऐरावत पर चढ़कर आए, तो इंद्र अब आ रहे हैं। तो हनुमान जी अब इंद्र को देखते हैं आते हुए, देखते हैं इंद्र और ऐरावत। ऐरावत एक सफेद हाथी है, तो सफेद हाथी को देखकर और उनके अंदर इतना आकर्षण जागृत हुआ, तो देखिए कि ये सफेद फल क्या है। अब तो लाल फल, काला फल, सब फल ही दिख रहे थे उन्हें, तो ये सफेद फल क्या है। तो उस ऐरावत को खाने के लिए वो छलांग लगाई हनुमान जी ने, तो इंद्र ने देखा कि ये तो वास्तविक रूप में नटखट है कोई व्यक्ति। तो अपना वज्र लिया और वज्र छोड़ा हनुमान जी के ऊपर, और वो वज्र जो है वो हनुमान जी के ठोड़ी पर लगा, और इसे संस्कृत में हनु कहते हैं, जिसके वजह से उन्हें नाम मिला हनुमान। और जैसे हम कुछ बालकों को कह रहे थे कि जैसे आप लोग का है सुपरमैन, वैसे हमारे ग्रंथों में है हनुमान। तो इसलिए उनको नाम मिला हनुमान। उनके हनु, उनके ठोड़ी के ऊपर वो वज्र मारा इंद्र ने, तो हनुमान जी वहां पर बेहोश होकर गिर गए। और जैसे ही हनुमान जी बेहोश होकर गिर गए, तो वायुदेव उनके पिता बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने पूरी वायु रोक ली, और सारे जो देवी देवता अब घुटन होने लगी, उन्हें वात नहीं अंदर तो घुटन होने लगी जिसके कारण शरीर चलता है, तो सब कुछ रोक लिया वायुदेव ने। तो भागे ब्रह्मा जी के पास कि कुछ कीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर लाइए, ये वायुदेव को प्रसन्न कीजिए, कुछ घुटन हो रही है। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि क्या हुआ, तो उन्होंने सब देवताओं को कहा, इंद्र को कहा कि भाई तुम्हारे वजह से सब कुछ हो रहा है। तो फिर सारे देवता गए और वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को फिर से होश में लाए, और इंद्र ने फिर वरदान दिया हनुमान जी को कि मेरा ये जो वज्र है ये कभी फिर प्रहार नहीं करेगा, यदि करेगा भी तो विफल रहेगा तुम्हारे ऊपर। तो इंद्र ने वरदान दिया, सूर्यदेव उन्होंने वरदान दिया कि मैं अपना 1% अपना तेज देता हूं, सूर्य का 1% तेज बहुत होता है, मैं अपना 1% तेज देता हूं और मेरी बुद्धि देता हूं। कुबेर उन्होंने अपनी गदा हनुमान जी को दी, और ब्रह्मा जी उन्होंने ब्रह्मास्त्र, और कहा कि सारे ऋषि मुनियों से बचे रहोगे। तो इस प्रकार से ये सारे वरदान हनुमान जी को दिए गए, और फिर हनुमान जी अब ये शक्ति प्राप्त करने के पश्चात तो और उनकी जो नटखट लीलाएं और बढ़ गई। तो हनुमान जी अपने पिता के साथ वन में रहते थे, आश्रम में रहते थे, तो अब वो घूमते हुए ये ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाते थे। तो ऋषि मुनि के आश्रम में जाते थे और ये बेचारे ऋषि मुनि तपस्या में आंख बंद कर समाधि में बैठे रहते, तो इनके जटा पर कूद जाते, और जटा पर कूद कर जटा खींचते, और इन्हें जब समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है तो उनकी दाढ़ी खींचना शुरू करते। एक ऋषि मुनि, उनको हनुमान जी ने उनकी जो कुटिया थी उसे बाहर से ताला मार दिया। तो जब सुबह का समय हुआ और ऋषि मुनि उनको शौच के लिए जाना था, तो देखा ये बाहर से बंद हो गया, तो बंद किसने कर दिया। तो वो पहले तो थोड़ा व्याकुल हुए, और जब समय बीत रहा था तो व्याकुलता बढ़ती गई। तो व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि फिर सोचा अभी खिड़की से कूदना पड़ेगा, पता नहीं किसने बंद कर दिया। तो खिड़की से कूदने गए तो खिड़की जैसे ही खोली तो खिड़की के सामने हनुमान जी ने क्या किया था, एक हाथी को और एक शेर को दोनों की पूंछ बांधकर खड़ा कर दिया। तो देखिए ये क्या है, शेर और हाथी दोनों की पूंछ बांधकर दोनों खड़े हैं उधर। एक बार नारद मुनि आए, तो नारद मुनि आए और इनके पिताजी ने नारद मुनि का स्वागत किया। तो हनुमान जी देख रहे हैं कि पिताजी बहुत स्वागत कर रहे हैं ऋषि मुनि का, इन साधु का। तो हनुमान जी पूछते हैं कौन है ये, तो फिर बताते हैं अरे तो नारद मुनि हैं, और आज हमारा हो भाग्य है कि हमारे आश्रम में आए हैं, इनके चरण लगे हैं। तो हनुमान जी तुरंत उनकी वीणा छीन लेते हैं, नारद मुनि की वीणा छीन कर भागना शुरू करते हैं। तो नारद मुनि भागते हैं, अरे मेरी वीणा दो, ये वीणा के द्वारा ही तो मैं कीर्तन कर पाता हूं। तो हनुमान जी वीणा लेके भाग रहे हैं और नारद मुनि पीछे पीछे। तो पूरे आश्रम में घूमने के पश्चात फिर वीणा दे देते हैं नारद मुनि को, और पिताजी को जाके कहते हैं अब इनके चरण पूरे आश्रम में आ गए। आपने कहा कि इनके चरण अपने आश्रम में पड़े हैं तो हमारा भाग्य है, तो मैंने सोचा केवल उधर ही क्यों, सब जगह होने चाहिए इनके चरण। तो नारद मुनि को पूरा टूर दे दिया अपने आश्रम का। एक बार तो ये सारे जो ऋषि मुनि जिनको कभी बंद कर देते थे, कभी उनकी कुटिया जला देते थे, तो ये सारे ऋषि मुनि ने सोचा कि ये जो वानर है इसने उपद्रव मचा रखा है यहां पर। तो ये सारे ऋषि मुनि आए और वो जानते थे कि इनको ये सब वरदान मिला है, तो इन्होंने श्राप नहीं दिया, केवल कहा कि ये सारी शक्तियां तुम भूल जाओगे, परंतु जब कोई याद दिलाएगा तब ठीक है, सारी शक्तियां फिर से पुनर्जीवित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ऋषि मुनियों ने जब ये कहा तब हनुमान जी ये सब कुछ भूल गए और यहां पर जामवान फिर याद दिला रहे थे। तो हनुमान जी जब लंका में पहुंचते हैं तो वहां पे घटना आती है कि वहां हनुमान जी पहले सब कुछ देखते हैं, पूरी लंका को देखते हैं कि क्या क्या है लंका के अंदर। तो देखते हैं कहीं पर कुछ खाने के लिए नहीं, इतने भूखे अब हनुमान जी, इतनी बड़ी यात्रा 100 योजन कूदे हैं तो भूख लग रही थी, परंतु लंका में कुछ ठीक खाने के लिए नहीं था, कोई ठीक का होटल भी नहीं मिला, हरे कृष्णा होटल। तो हनुमान जी क्या किए, उन्होंने देखा कि एक दुर्गा का मंदिर और ये रावण के जितने भी राक्षसी पार्षद ये दुर्गा के मंदिर में जाकर दुर्गा जी की आराधना किया करते थे। तो हनुमान जी छोटा से बन के दुर्गा के मंदिर में गए और दुर्गा की जो मूर्ति थी उसके पीछे छिप गए, और ये सारे राक्षस आए और सब सामग्री लेकर दुर्गा की आराधना करने के लिए। तो पीछे से हनुमान जी बोलते हैं अब इन राक्षसों को, अरे मूर्ख। तो सब राक्षस डर जाते हैं, अरे दुर्गा देवी आज बोल रही है, यह आवाज आज दुर्गा देवी की आ रही, हालांकि दुर्गा देवी मूर्ख कह रही है परंतु फिर भी दुर्गा देवी की आवाज है। तो हनुमान जी कहते हैं कि जानते नहीं कि इस समय मुझे भूख लगी है और केवल ये सब आरती वारती कर रहे हो मेरी, कुछ अच्छे भोग लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुरंत सभी जाकर तो मेनू दे देते हैं हनुमान जी क्या क्या लाना है, नहीं तो अनशन कुछ भी ले आएंगे लोग। तो बता देते हैं कि ये ना खीर लड्डू और जो जो उनको पसंद है वो सब कुछ बता दिया, पूरा मेनू दे देते हैं उनको। तो जैसा जो कुछ बताया वैसा ये सब कुछ लेकर आते हैं और पूरी लंका के सारे राक्षस जो जो बना सके इस प्रकार के सारे खाद्य पदार्थ लेकर वो रखते हैं। और फिर हनुमान जी पीछे से कहते हैं अब सभी बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ो, तो सभी को बाहर भगा दिया और फिर कड़ी लगाकर हनुमान जी पूरा आस्वादन करते हैं और भर पेट खाकर ढकार लेने के पश्चात फिर कड़ी खोलते हैं और जैसे ही ये अंदर आते हैं फिर इन्हें प्रसाद खिलाते हैं, सब वहां पर खत्म ये सारे राक्षस। तो आगे फिर बहुत कुछ होता है लंका में। फिर एक प्रसंग आता है कि जब अब रावण का नाश हो चुका है, अभी सभी अयोध्या जा रहे हैं रामचंद्र जी सीता, तो हनुमान जी की तरफ देखते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये सारे वानर मेरे साथ आएं, अयोध्या नगरी देखें। और सभी वानर चाहते थे कि हमने अयोध्या नगरी नहीं देखी, तो वो अयोध्या नगरी जाना चाहते थे। तो हनुमान जी ने कहा परंतु ये सैकड़ों की संख्या में है, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में है ये, और आपका ये पुष्पक विमान एक ही है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, ये पुष्पक विमान बहुत विशेष है, और ये पुष्पक विमान ऐसा था कि जितने भी लोग इसके अंदर बैठना चाहे उतना बड़ा ये हो जाता था। यदि एक व्यक्ति जाना चाहे तो छोटा सा एक व्यक्ति के लिए छोटा सा विमान बन जाएगा, और यदि करोड़ों सैकड़ों यदि वानर भी जाना चाहे तो उतना बड़ा ये पुष्पक विमान बन जाता था। तो तुरंत प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान को इतना बड़ा कर दिया, और हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा कि आप सोच लीजिए, अयोध्या नगरी में आप ये वानरों को बुला रहे हैं तो आपके रिस्क के ऊपर है, वहां पर सभी बड़े बड़े विद्वान और सब सुशिक्षित आपके पार्षद रहेंगे, आपके परिवार वाले, परंतु ये वानर आप जानते हैं कि कैसा व्यवहार करते हैं। रामचंद्र जी ने कहा नहीं नहीं, चलो चलो सबको लेकर चलो। तो सबसे पहले वो पहुंचते हैं नंदीग्राम। कौन है? भरत नंदीग्राम में। और प्रभु श्री राम देखिए, उनका चरित्र देखिए कि प्रभु श्री राम सबसे पहले हनुमान जी को आगे भेजते हैं, पुष्पक विमान को आगे जाने से पहले हनुमान जी को भेजते हैं नंदीग्राम और कहते हैं कि जाकर भरत को यह समाचार सुनाओ कि मैंने रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है और 14 वर्ष अब पूरे हो रहे हैं, तो मैं फिर से अयोध्या आ रहा हूं, ये समाचार सुनाओ भरत को। तो हनुमान जी जाने लगे, परंतु रामचंद्र जी ने रोका हनुमान जी और कहा कि नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह मैं कहना चाहता हूं कि जब यह समाचार सुनाओगे भरत को तो भरत की आंखों में देखना, यदि भरत की आंखों में लगे कि उन्हें खुशी नहीं हो रही मेरे आने की, कि उन्हें ऐसे लग रहा है कि शायद ये राजगद्दी जाने वाली है अब मेरे हाथ से, यदि उनकी आंखों में खुशी नहीं देखो तो मुझे आकर बताना, मैं फिर से जाऊंगा वापस, मुझे फिर अयोध्या में नहीं आना। देखिए 14 वर्ष वनवास में रहने के पश्चात प्रभु श्री राम चिंता कर रहे थे भरत की, और यदि देखो कि भरत बहुत खुश लग रहे हैं ये समाचार सुनकर मेरे आने का, तब मुझे बताना, तब हम फिर आएंगे। तो हनुमान जी जब वहां पर पहुंचे तो भरत महाराज इतने प्रसन्न हुए, वो कह रहे थे कि मैं इस क्षण की प्रतीक्षा 14 वर्ष से कर रहा हूं, आपने जो समाचार सुनाया है इतना सुंदर मधुर समाचार है। तो तुरंत उन्होंने रामचंद्र जी और पूछा कि कौन कौन और आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पूरी वानर सेना भी आ रही है। तो सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की, भंडारा। तो जैसे ही वहां पर अब ये सारे पूरी वानर सेना प्रभु राम सीता सब पहुंचते हैं, तो वहां पर सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है नंदीग्राम में, भरत महाराज किए हैं। तो हनुमान जी को इंचार्ज बनाया जाता है सभी वानरों को बिठा कर खिलाना है, और ये वानरों ने कभी सीखा नहीं था, तो सभी वानरों को हनुमान जी कहते चलो एक लाइन में पंगत में बैठ जाओ। तो सभी वानर पंगत में बैठे हैं और एक दूसरे को देखते हैं कि भाई ये सबसे पहले एक पत्तल रख दिया, तो कहा इसे शुरू करना है खाना। तो केले का जो पत्ता था, केले का पत्ता रखा गया, तो सभी वानर है केले का पत्ता, ये तो हम तो केला खाते हैं, केले का पत्ता क्यों रखा है। और उनकी आदतें थी केवल कूद कूद कर अपना प्रसाद ले लेना जहां कहीं से, ये पंगत में बैठकर महाप्रसादे बोलकर ये सब कभी उन्होंने किया नहीं था। तो सबने सबको हनुमान जी ने पंगत में बिठा दिया, सब लाइन में बैठो और कोई शरारत नहीं यहां पर। तो सभी बैठ गए और हनुमान जी सब देख रहे थे सबको बराबर मिल रहा है कि नहीं सब कुछ। तो जब सब कुछ हो गया, सब बैठ गए, तो देखा रामचंद्र जी देख रहे हैं कि हनुमान जी के लिए जगह नहीं बैठने की, और हनुमान जी के लिए वो केले का पत्ता नहीं है। तो प्रभु श्री राम हनुमान जी को बुलाते हैं, आओ मेरे साथ बैठकर खाओ। तो हनुमान जी कहते हैं मैं आपके साथ बैठकर कैसे खा सकता हूं, आप तो मेरे आराध्य स्वामी हैं, आपको तो मुझे सेवा आपकी करनी चाहिए। प्रभु श्री राम बोलते हैं नहीं नहीं, बैठो और मेरे साथ खाओ, मेरा आदेश है, मेरे ही केले के पत्ते में खाओ। तो वो कहते हैं भाई कैसे मैं आपके आपके ही केले के पत्ते में कैसे मैं झूठा करूं उसे। तो प्रभु श्री राम अपनी उंगली से उसमें एक रेखा निकालते हैं, और कहा गया है तब से केले के पत्ते के बीच में वो रेखा पड़ी है। जब प्रभु श्री राम ने अपने हाथ से उंगली से वो रेखा निकाली कि ठीक है इस भाग में तुम खाओ, इस भाग में मैं खाऊंगा। और ये प्रेम प्रभु श्री राम हनुमान जी के प्रति दिखा रहे थे, और प्रभु श्री राम ये दर्शा रहे थे मायावादियों को कि हर समय भगवान और भक्त दोनों में अंतर होता है, एक नहीं है, दोनों में अंतर है। तो देखिए एक केले के पत्ते से मायावाद को विध्वंस किया प्रभु श्री राम ने। तो उसके पश्चात फिर जब वो अब अयोध्या जाने ही वाले थे, तो वहां पर माता सीता वो कहती हैं सबको, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को, भरत को, कि देखो यहां पर अब प्रभु श्री राम आ चुके हैं, और अब इतना समय हुआ है कि हम इनकी सेवा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मैं इतने दिन तक पूरे एक वर्ष में थी लंका में, और भरत आप यहां पर थे, शत्रुघ्न भी यहां पर थे, तो एक ही व्यक्ति है जो पूरी सेवा ले लेते हैं ये प्रभु श्री राम की, और वो है ये हनुमान जी। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हनुमान जी अयोध्या में आने से पहले जितनी भी सेवाएं हैं दिन की प्रभु श्री राम की, वो हम सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में। तो सारी सेवा इष्टागोष्ठी बिठाई गई, और जितनी भी सेवाएं थी वो सारी सेवा बांट ली आपस में, और शत्रुघ्न से कहा कि हनुमान जी जब आएंगे अयोध्या के अंदर तो उनको ये लिस्ट दिखा देना सेवा का, कि आपके लिए कोई सेवा बाकी नहीं रह गई, आप जा सकते हैं अपनी वानर सेना के साथ, फिर से रिटायरमेंट उनको दे दो। तो शत्रुघ्न वहां पर खड़े थे पूरी सेवा की लिस्ट, और ऐसी सेवा निकाली थी सबने कि जितनी भी व्यक्तिगत सेवा प्रभु श्री राम की हो वो सब व्यक्तिगत सेवा उन्होंने आपस में बांट ली, सुबह उठने से पहले और सोने के बाद तक रात को सब सेवा बांट ली। तो शत्रुघ्न खड़े हैं लिस्ट लेकर, हनुमान जी वहां पर आते हैं, ये देखो सारी सेवा बांट चुके हैं हम, तो आपकी सेवा है, आप जा सकते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं ऐसे कैसे, बताओ लिस्ट बताओ। तो हनुमान जी वो लिस्ट देखते हैं सेवा की, और सेवा की लिस्ट देखकर वो शत्रुघ्न से कहते हैं एक सेवा रह गई इसके अंदर। तो शत्रुघ्न, इतना हमने घंटों इसके अंदर लगाया, ये कौन सी सेवा निकाल ली हनुमान जी ने? तो हनुमान जी कहते हैं, शत्रुघ्न पूछते हैं कौन सी सेवा है जो हम यहां पर नहीं रखे हैं? तो हनुमान जी कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम जम्हाई लेते हैं, तो जम्हाई जब वो लेते हैं तो चुटकी बनाने के लिए कोई नहीं। जब कोई व्यक्ति जम्हाई लेता है तो चुटकी बजाता है, प्रवचन में होता है ना बहुत बार बहुत बार जम्हाई आती है तो चुटकी बजाना पड़ता है। कई बार जब चुटकी नहीं बजाते तो बहुत जोर से आवाज आ जाती है। तो हनुमान जी, उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम जब जम्हाई लेंगे तो चुटकी बजाने के लिए आप में से कोई नहीं, ये मैं करूंगा। तो शत्रुघ्न मुस्कुराने लगे कि भाई ये भी कोई सेवा हुई, भाई बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, क्यों प्रभु श्री रामचंद्र जी को कष्ट दिया जाए चुटकी बजाने के लिए। तो वो जाकर सीता को कहते हैं कि भाई ये आ गए, ये सेवा इनकी है। तो अब सभी देख रहे हैं एक दूसरे को, हनुमान जी को और प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। तो अब दिन शुरू हुआ अयोध्या में। तो हनुमान जी अब राम सीता का जो कक्ष था वहां पर बैठे हैं, तो वहां पर बैठे हैं तो सीता कहती है भाई यहां पर क्यों बैठे हो, थोड़ा बाहर थोड़ा प्रतीक्षा करो। तो हनुमान जी कहते हैं अरे भाई जम्हाई तो कभी भी आ सकती है। तो एकटक होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख की तरफ ही देख रहे थे और हाथ ऐसे किए थे, जैसे ही जम्हाई आए तो कूद कर चुटकी बजाना है। तो बाकी सब तो अन्य सेवा में लगे थे, सीता प्रसाद बनाने में लगी थी, तो परंतु यहां पर सबसे ज्यादा अच्छी सेवा हनुमान जी को मिली कि पूरे दिन भर वो रामचंद्र जी के मुख को निहार रहे थे। तो अब रात्रि का समय हुआ, सीता ने कहा कि अब जाकर सो। तो हनुमान जी कहता रहे अब ज्यादा जम्हाई आती है रात को। तो पूरे 24 घंटे हनुमान जी वहां पर केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी की जम्हाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ये देखने मिलता है कि कैसे वो हर समय सेवा में रत रहते हैं, इतनी आतुरता है सेवा में रत रहने की। तो वहां पर ऐसा हुआ कि अयोध्या में एक फीस्ट आयोजित किया बंदरों के लिए, सब वानरों के लिए। तो हनुमान जी ने सब वानरों को कहा देखो अब अयोध्या में तुम लोग सब हो, यहां पर ठीक से पेश आना, कोई शरारत नहीं, अपने जो बंदरों के कार्य वो यहां पर मत करना। तो सारे बंदर कहे कि क्या करें फिर, हमें बताइए कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो हनुमान जी कहे जैसा मैं करूं वैसा ही करो, केवल मुझे देखते रहना। तो सभी बंदर बैठकर हनुमान जी को देखते, जो हनुमान जी करते, हनुमान जी यहां जाते तो सब बंदर यहां जाते, हनुमान जी इधर देखते तो सब इधर देखते। तो वो फ्लाइट कमांडर थे, लेफ्ट टर्न राइट टर्न अबाउट टर्न सब कुछ बोलते, वैसे ही सारी वानर सेना करती। तो अब इनके लिए फीस्ट आयोजित किया गया। तो सोचा कि वानरों को क्या अच्छा लगता है, तो चना अच्छा लगता है, तो उनके लिए सबसे पहले चना रख दिया गया। तो सभी बैठे हैं, सामने चना है और सभी हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं। तो हनुमान जी उस चने को लेते हैं और वो चने का देखते हैं, चने के ऊपर छिलका है, तो ऐसे दबाते हैं तो छिलका उनकी उंगली में रह जाता है और चना ऊपर उड़ता है। तो जैसे ही चना ऊपर उड़ता है, हनुमान जी सोचे ये छलांग कैसे लगा रहा है, इसे पता नहीं छलांग लगाने वाला कौन है, मेरे सामने चने की हिम्मत छलांग लगाए। तो हनुमान जी छलांग लगाकर चने को पकड़ते हैं। तो जैसे ही हनुमान जी छलांग लगाकर चने को पकड़ते हैं, क्या देखते हैं, पूरी वानर सेना वो भी यही कर रहे हैं, चना ऊपर सभी छलांग लगाकर चने को पकड़ रहे हैं। उन्हें क्या लगा कि अयोध्या में चना ऐसा खाया जाता है कि उसे छिलके से बाहर निकालो, ऊपर जाएगा, छलांग लगाकर ऐसे खाओ चने को। तो सभी वानर कूदने लगे, चना इस प्रकार से खाने लगे, और वहां पर प्रभु श्री राम आकर देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो हनुमान जी से पूछते हैं, हनुमान जी क्या हो रहा है? चना खा रहे हैं। तो एक बार हनुमान जी रामचंद्र जी के कक्ष में बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे चुटकी के लिए। तो वो देखते हैं कि माता सीता वो अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान जी आकर पूछते हैं, ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या लाल लाल बीच में रखा है? तो सीता देवी अभी क्या समझाए हनुमान जी को कि ये क्या है बीच में। तो सीता कहती हैं, ये लगाने से रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं। तो बस रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं ये लाल लाल लगाने से, बस। तो जैसे रामचंद्र जी तैयार होकर दरबार में जाते हैं, तो हनुमान जी वहां पर ऊपर से नीचे तक पूरा लाल, और अब वहां पर सारे मंत्रीगण और ऋषिगण वो सब बैठे हुए हैं, और ये इतना बड़ा लाल वानर अंदर आ रहा है और रामचंद्र जी के सामने आकर मुस्कुराते हैं, कैसे लगे? तो रामचंद्र जी पूछते हैं, ये क्या है, ये क्या हाल बना रखा है हनुमान? तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे सीता देवी ने कहा कि ये जो लाल वो लगा रही थी बीच में बालों के, तो आप उससे प्रसन्न होते, तो मैंने सोचा कि बीच में थोड़ा सा क्यों लगाऊं, पूरा ही ऊपर से नीचे तक मैं सिंदूर से भर लेता हूं अपने आप को। तो पूरा ऊपर से नीचे तक हनुमान जी ने अपने आप को सिंदूर से भर लिया, ये दिखाते हुए कि यदि आपको इससे प्रसन्नता मिलती है। तो हनुमान जी यहां पर ये दर्शा रहे हैं कि भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, कुछ भी। यदि पूरा सिंदूर से लेप लिया, अपने आप को लाल बना लिया, परंतु यदि प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं तो उसमें मेरी प्रसन्नता है। तो हनुमान जी के विषय में बहुत सुंदर आचार्यों ने एक उत्प्रेक्षा की है कि जब हनुमान जी सीता का खोज करने के पश्चात अब फिर से जब आ रहे हैं प्रभु श्री राम को सूचना देने के लिए, तो समुद्र के तट पर सभी पहुंच चुके हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं हनुमान जी की। तो वहां पहुंचने के पश्चात अब हनुमान जी देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम को मैं ये खुश खबर दूंगा कि सीता मिल गई है। तो हनुमान जी अब सोच रहे हैं कि मैं कौन से वाक्य बोलूं ये खुशखबर देने के लिए, और प्रभु श्री राम इतने आतुर हनुमान जी को आता देख, और हनुमान जी इतने आतुर अब ये समाचार देने के लिए, तो दोनों आतुर और दोनों आपस में एक दूसरे की आतुरता देख रहे हैं। तो हनुमान जी अब सोच रहे हैं कि मैं कैसे शुरू करूं ये समाचार देना। तो हनुमान जी पहले सोचते हैं कि यदि मैं ये कहूं मैंने सीता को खोज लिया है तो बहुत बड़ा वाक्य हो गया, पता नहीं प्रभु श्री राम इतना बड़ा वाक्य सुन पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे कि सीता मिली या नहीं, क्या सीता जीवित है कि नहीं, रावण ने क्या किया, ये सब कुछ सोच रहे होंगे। तो यदि मैं ये वाक्य शुरू करूंगा मैंने सीता को खोज लिया, तो ये जो मैं शुरू करूंगा अपने बारे में बोलना ये ठीक नहीं, हो सकता है प्रभु श्री राम सोचें मैं सीता को खोज नहीं पाया या मैं असफल रहा, तो ये जो मैं शब्द है ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो मैं कैसे बताऊं? तो सबसे पहले सीता ये शब्द मैं बोलता हूं अपने वाक्य में कि सीता मिल गई। परंतु फिर हनुमान जी अब सोच रहे हैं कि यदि मैं सीता का नाम पहले लेता हूं, हो सकता है कि वो फिर से व्याकुल होकर ये सोचने लगे, सीता क्या हुआ, सीता नहीं मिली, सीता जीवित नहीं है, तो हनुमान जी सोच रहे हैं मैं कैसे समाचार सुनाऊं, इतनी आतुरता उनके अंदर। तब फिर उन्होंने क्या वाक्य कहा कि सबसे पहले रामचंद्र जी की आतुरता को संतुष्ट करने के लिए मैं कहूंगा मिल गई। तो देखिए पूरे व्याकरण को बदल दिया हनुमान जी ने केवल रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए, और उन्होंने क्या वाक्य कहा मिल गई सीता मुझे। तो ये व्याकरण के अनुसार ठीक नहीं होता, परंतु उन्होंने सोचा कि जब मैं ये कह दूंगा केवल पहला शब्द ये रहेगा मिल गई, तो रामचंद्र जी संतुष्ट हो जाएंगे और उनकी आतुरता शांत हो जाएगी। तो आचार्य बताते हैं कि ये है हनुमान जी की सेवा, कि वो अपने को सामने नहीं रखना चाहते, वो केवल रामचंद्र जी की प्रसन्नता चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का वाक्य कहा। और जब हनुमान जी ये समाचार देते हैं प्रभु श्री राम को, तो प्रभु श्री राम आलिंगन करते हैं हनुमान जी को, और प्रभु श्री राम कहते हैं क्योंकि मैं एक अब वनचारी हूं, वन में मैं भटक रहा हूं 14 वर्ष से, तो मेरे पास कुछ नहीं है हनुमान जी तुम्हें भेंट स्वरूप देने के लिए, जो तुमने कार्य किया है क्या भेंट मैं दूं, केवल एक ही चीज मेरे पास है और वो है मेरे आलिंगन, केवल यही मैं दे सकता हूं। और हनुमान जी जान गए थे कि उसके द्वारा प्रभु श्री राम सब कुछ दे रहे थे हनुमान जी को, और हनुमान जी और कुछ नहीं चाहते थे केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी का आलिंगन। तो हनुमान जयंती के अवसर पर हमें भी हनुमान जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए और यही याचना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से हनुमान जी निष्कपट भाव से केवल प्रभु श्री राम की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन जी रहे हैं, उसी प्रकार से हमें भी केवल प्रभु श्री राम की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करना चाहिए। हमारा हर शब्द, हमारा हर विचार, हमारी हर इच्छा, हमारा हर कार्य हनुमान जी के समान केवल प्रभु श्री राम की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। और जैसे हमने हनुमान जी के विषय में कहा कि वो आचार्य हैं और माता सीता मंत्र हैं जो आचार्य देते हैं, और प्रभु श्री राम वो मंत्रार्थ हैं, तो हनुमान जी ये सब की भूमिका निभा रहे हैं और इन सब भूमिकाओं से हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें सर्वस्व अर्पण करना है प्रभु श्री राम के चरण कमलों पर। बोलो बजरंग बली श्री हनुमान जी की, बोलो सियावर रामचंद्र की, श्री राम नवमी महामहोत्सव की, बोलो हनुमान जयंती महामहोत्सव की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा।